मुरली है 17 दिसंबर 79, आज क्या है 18, तो 17 दिसंबर अभी अभी कल और आज की बात है, तो 17 दिसंबर 1979। माया भी बड़ी चतुर है, चतुर अर्थात होशियार, चालबाज, क्लेवर, श्रूड। विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। किस समय? उस समय अमृत वेले, बस अमृत वेले आती है। कब कब आती है? दिन में आती है, अमृत वेले आती है, हर समय आती है।
डाइनिंग में,
डाइनिंग टेबल में, वो तो मेन स्थान है उसका। तो माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलापन, आलस्य और व्यर्थ संकल्प की बहानेबाजी में रिझा लेती है। तो बाजीगर क्या करता है? अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित करता है। वैसे ही माया भी अनेक प्रकार के अलबेलापन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हो, और फिर ऐसे समय को गवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम। बात अमृत वेले की चल रही है कि जिसमें बाबा कह रहे हैं कि उसी समय बाप से माया किनारा करा देती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। अगर अमृत वेला कमजोर है तो किस प्रकार की अवस्था का अनुभव होता है? ध्रुव भाई क्या अनुभव होता है? स्वानुभव से बताओ, स्वानुभाव। वो तो है, मेहनत है, और जल्दी धारण कर लेते हो, खुशी नहीं रहती, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, खुशी कम, किसी ने कुछ कहा तुरंत फील करना, सेंसिटिव हो जाना, दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना, और लाइन क्लियर नहीं होगी, लगाएंगे कहीं और लगेगी कहीं, और कहीं पे निशान, कहीं व्यर्थ संकल्प आएंगे, और
कैचिंग पावर
तो बात ही नहीं, दूर हो जाएंगे। विकारों का आक्रमण होगा, सफलता का अनुभव नहीं होगा, विकारों का आक्रमण होगा, पुराने संस्कार आक्रमण करेंगे। सुधा माता, अमृत वेला कमजोर हो गया तो क्या होगा दिन में? शक्ति कम हो जाएगी, करंट ही कम, शक्ति कम, चार्जिंग पूरी नहीं हुई है बैटरी, तो दिन में कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे अगर डिस्चार्ज हो गई, समझ लो हम कहीं जंगल गए घूमने और वहां गुम हो गए और सबकी बैटरी डिस्चार्ज, अब किससे मदद मांगे? तो बैटरी फुल चार्ज चाहिए, आना चाहिए अमृत वेले के बाद, प्लीज अनप्लग 100%। इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो कि बस बच्चे बहुत हो गया, अभी बाकी है लाइन में, थोड़ा बाजू हटो, कितना लोगे, खींच रहे हो कंटिन्यूस। प्लीज अनप्लग। तो इतनी बैटरी चार्ज हो जाए अमृत वेले। अगर फाउंडेशन कमजोर तो सोचो कोई इमारत बनी है जो जिसका उस भवन का फाउंडेशन ही कमजोर है, तो क्या होगा? कभी भी गिर सकती है। थोड़ी छोटी मोटी आंधी आ गई, नुकसान। और हाँ, और उसमें भय रहता है। कल की मुरली में था, तुम्हें तो निर्भय बनना है, निडर बनना है। निडर वही बनेंगे जो कल की साकार मुरली, बताओ कल की मुरली। पूर्ण देही अभिमानी होंगे तब, निर्भय कब होंगे? पूर्ण देही अभिमानी होंगे तब। तो इमारत जब कमजोर है, फाउंडेशन जब कमजोर है, तो हमेशा एक भय रहेगा कि कभी भी गिर सकती है। स्थिति का कोई भरोसा नहीं, अभी तो ठीक लग रही है, पता नहीं वो आत्मा आ गई तो गए, ये परिस्थिति आ गई तो गए। मधुबन में जब तक है तब तक पावरफुल स्थिति है। जैसे आबू रोड क्रॉस किया, ट्रेन में ही माया चालू। अभी पहुंचे भी नहीं है, ट्रेन में ही माया चालू। मधुबन के वायुमंडल से बाहर जाते ही ये किला है, किले में सुरक्षित हो। किले से बाहर कदम रखा कि देवेंद्र भाई क्या हो जाएगा, क्या क्या तो वो होता है ना, पैर में कोई भाग रहा है दुश्मन, तो यहाँ से वो रस्सी फेंकते हैं उसके पैर में और खींचते है, धड़ से गिरता है नीचे, तो वैसा हो जाता है। तो अमृत वेला कमजोर, शक्तिशाली नहीं, तो मेहनत ज्यादा, सारे दिन भर मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, थकान लगती है, बहुत काम है, थक गए। थकाता कौन है? कल हमने परसों चर्चा की थी ना, अथक कौन होगा? अब दूसरा चर्चा का विषय है, थकते कब है, थकाते थकाता कौन है? क्या सेवा थकाती है? व्यर्थ थकाता है सेवा में, कमजोर मानसिकता। जो बातें वहां चल रही है, सेवा तो कितनी भी कर सकते हैं, परंतु उस सेवा में जो व्यर्थ बातें चल रही है वो थका देती है। पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, टकराव थकाता है, वह मनुष्य टकराता थकाता है। ईर्ष्या, नफरत, क्रिटिसिज्म, तीनों बातें बाबा ने बताई थी। अगर ये तीन है तो इन तीनों को त्यागो और मास्टर दाता बनो, ब्रह्मा बाप समान। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या से अग्नि, स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा, खुद भी गिरता है दूसरों को भी गिराते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को हिम्मतहीन बनाते हैं और दुखी करते हैं, हास्य के रूप से भी हो तो भी। आलोचना, समालोचना तो व्याकरण का शब्द है, आलोचना आलोचना करना, निंदा करना, अनादर करना, क्रिटिसाइज करना, विरोध करना, इस तरह से। तो ये सारे चीजें होगी तो आत्मा वहां थकती है, इन बातों से थकती है, बाकी चीजों से, सेवा से नहीं थकती है। सेवा से तो शक्ति भरती है, परंतु नाम सेवा का और ये सब अगर हो रहा है तो आत्मा थकती है। प्रपंच, परमार्थ में परमार्थ और प्रपंच एक है, मनमत एक है, परमत एक है श्रीमत। इन तीनों को सेपरेट करना, बस यही लक्ष्य है सारे दिन भर। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है, इस पर काम करो। अभी इसको सेपरेट करो, ये श्रीमत ये है, ये मनमत है, लाइन खींचो, ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत, ये तीन जिसको सेपरेट करते आ गया तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये जो हो रहा है ये श्रीमत है, ये जो है ये मनमत है, ये जो है ये परमत है। यहां तीनों इस तरह इस कदर मिक्स है, मिश्रित है कि समझ में नहीं आ रहा है कहां क्या है, श्रीमत है, मनमत है कि परमत है। तीनों के टावर मजबूत है तो तीनों में से हम कहां हैं? तीनों को अलग करो, बस ट्राई टू सेपरेट मनमत, श्रीमत एंड परमत, ये पुरुषार्थ है। तो अगर फाउंडेशन कमजोर तो दो बातों का अनुभव होगा, एक तो थकावट, थकान, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही 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 सब कुछ, ज्ञान भी तो वही है, सब कुछ वही। दूसरा आलस्य अलबेलापन, दूसरा और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो गया तो पहला एक अनुभव है थकान और दूसरा अनुभव है उदासी, कुछ करने की दिल नहीं है, ऐसा लगता है बस सो जाओ, खाओ पियो, थोड़ी बहुत सेवा करो, थोड़ी बहुत मुरली पढ़ो पढ़ाओ, थोड़ी बहुत चर्चा कर लो और चलो निधिया की गोद में, निद्रा देवी की गोद में। एक अंग्रेजी कवि कहता है कि मुझे सुबह बहुत पसंद है, परंतु थोड़ा अगर देरी से होती तो। और फिर क्या सोचते हो, तो दूसरे चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं अंदर से, उदासी, शिकस्त अर्थात हार, उदासी, अवसाद, कुछ अच्छा न लगना, कुछ करने की दिल न होना, सोने की दिल होना, या फिर यहां नहीं रहना, कहीं घूमने चले तो अच्छा लगे, थोड़ा मूड चेंज, या फिर ये नहीं तो चलो कुछ बनाते हैं आज, अच्छा उससे थोड़ा शायद हो सकता है कि रिफ्रेश हो जाए।
बनाने के लिए तो मूड चाहिए।
और फिर क्या सोचते हैं, न मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, सोचते हैं पता नहीं ये मंजिल तो बहुत भारी लग रही है, न मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर, फिर इस तरह के प्रश्न पूछते। कल की मुरली में था ना, प्रश्न बहुत पूछते रहते हैं, हाँ, इंतजाम इंतजार, कल की साकार मुरली, प्रश्न ही पूछते रहते हैं। कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जाएंगे, ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। फिर अब काम नहीं है तो क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे, वर्तमान की प्राप्ति को छोड़। कब अच्छे संकल्प चलेंगे और कर्मेंद्रिय जीत, तो जब त्रेता तक पहुंचोगे, हाँ सतो स्टेज तब है, मतलब अभी तो बहुत ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रिया जब ठंडी हो जाएगी तब समझना अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, त्रेता तक, सिल्वर एज तक, बस। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। संगम युग की विशेषता क्या है, अभी अभी प्रारब्ध और अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रारब्ध, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, ये है। और यहाँ क्या होता है, वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। तो माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किराना करने के लिए आ जाती है, विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है, जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेता है, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलापन, आलस्य और व्यर्थ संकल्प की बहानेबाजी में रिझा लेती है, इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं। गोल्डन चांस, अमृत वेला क्या है, गोल्डन चांस, स्वयं भगवान आकर खड़ा है मिलने के लिए। देखो अपनी हाथ की लकीरों को, कौन सी वो लकीर थी कि जिसने इतना भाग्य बनाया, देखो अच्छा ग्लव्स है, बाद में देख लेना। तो देख रहे माता जी, कौन सी वो दो लकीरें थी जिनका मिलन हुआ और ऐसा भाग्य हमारा बन गया, एक बार अच्छे से देख लेना। नहीं फिर भी देख लेना, सोचना, सोच तो सकते हैं वो कौन सी लकीर थी जो इतनी अच्छी थी कि हमारा सुबह उठते ही आँख खुली और भगवान सामने। भक्तों को भी ऐसा भाग्य नहीं है, इतना नहीं है। बचपन में क्या,
बचपन में नहीं था, अभी
अभी बढ़ गई लाइन, ऐसे भी हो सकता है, बचपन की लाइन थोड़ी छोटी थी, ब्राह्मण बनते ही लाइन, हाँ। अभी लाइन तो देखो कितनी बड़ी है, ये देखो हमारी यहाँ तक जा रही है, पीछे तक बहुत बड़ी है, यहाँ से चालू होकर आपका सुपर डुपर डुपर भाग्य है इस वजह से। तो देखना कभी कभी बीच में कौन सी कैसी लाइन है ये, वाह ऐसी लकीर है शायद ही किसी को होगी कि सुबह आग खुली और स्वयं भगवान खड़ा है द्वार पर, क्या चाहिए, पूछ रहा है क्या दू। तो ऐसे समय को गवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण, सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते, एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते और दूसरा दिल शिकस्त, उदास। अगर उदासी है जीवन में तो समझना अमृत वेला कमजोर है। सबसे पहले अमृत वेले को ठीक करो। अगर दिन भर में दुख की अनुभूति होती है, घृणा की अनुभूति, ईर्ष्या की अनुभूति, द्वेष की अनुभूति, दूसरों को देखने की आदत, दूसरों को ज्यादा समझना, अपने आप को खुद समझना, अगर ये हो रहा है तो शायद अमृत वेला कमजोर है। और फिर क्या सोचते हैं, न मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, प्रश्नों की कतार, प्रश्नों की भीड़ उत्पन्न हो जाती है हृदय में। समय नजदीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि आएगी, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे, वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। तो जब ये गोल्डन चांस है, अभी जो भी प्रोसीजर की जाती है वो होने के बाद एक चेकलिस्ट होती है, जांच सूची, चेकलिस्ट। मेडिकल में जो भी कोई प्रोसीजर एक बनाई जाती है, सपोज ये करना है ये करना है, तो ये सारी चेकलिस्ट देखी जाती है कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स रेडी है, पेशेंट्स रेडी है, पेशेंट एनबीएम है, रात भर से भूखा है, कुछ खा तो नहीं लिया, ये पूरी चेकलिस्ट होती है। वो बराबर लगा हुआ था ना, इस आग का ऑपरेशन है या इस आग का, तो इस आग का ऑपरेशन है तो यहाँ पर निशान, गलती से इधर तो यहाँ निशान करते हैं, ऐसे बहुत होता है रॉन्ग तो वो पूरी सूची होती है, ये घुटने का ऑपरेशन, ये घुटने का ऑपरेशन, कौन से घुटने का है, वो सारी। फिर कंसेंट फॉर्म साइन की है रिलेटिव ने, सब कुछ बता दिया है, खर्चे की बात हो गई है, सारी चेकलिस्ट पूरी, अमृत वेले की चेकलिस्ट अब निकालो, लिखो निकलेश भाई अमृत, नहीं वो नहीं, अमृत वेले कौन कौन सी चीजें करनी है उसकी लिस्ट, नहीं वो तो उठ गया सब कुछ हो गया, अभी करना क्या क्या है वहां पर उसकी चेकलिस्ट है, क्या पेन पूरा पॉइंट्स लिखो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, ये हर दिन ये इतनी बातें होनी ही चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो समझ लेना अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। जांच सूची चेक लिस्ट क्या क्या करना है उसमें बताओ, शुरुआत से लेके अंत तक, एक घंटे में, दो घंटे है तो बहुत अच्छा, तीन घंटा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं उसके पहले, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग से चालू करो। चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट अर्थात वो लिस्ट होती है वो रोज चेक करना है, हो गया ये किया यस, ये किया यस, ये किए तो मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम अपनी चेकलिस्ट, ये तो जनरल चेकलिस्ट है, इसमें फिर आप एडिशन करो, यही लंबी होने वाली है, पर यही बहुत लंबी हो जाएगी। तो एडिशन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, उसके बाद सो एकदम नहीं भागो, लंबी है यात्रा पहले तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, उसके भी पहले देह के भान से थोड़ा सा अलग होकर, कोई लोग इस तरह से भी कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ ये नहीं हूँ ये नहीं हूँ, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कहता है कि नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, परंतु योग में फिर भी कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और क्या हूँ, या फिर ये शरीर तत्व में विलीन हो गया, शरीर को निगेट करना, शरीर को अलग करना, अब मैं हूँ। तो यहाँ सीधा हम लेते हैं कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, सबसे पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं कौन हूँ, फिर थोड़ा आत्मा के ऊपर चिंतन, कौन हूँ, आत्मा हूँ, कैसी हूँ, ज्योतिबिंदु हूँ, कैसी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, कहाँ हूँ, ब्रह्मकुटी के मध्य में हूँ, देह से अलग हूँ, देह को चलाने वाली हूँ, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली, इस शरीर का संपूर्ण संचालन करने वाली मैं आत्मा हूँ और मैं अलग हूँ। ये चेतन है, ये जड़ है, अलग कर दिया, तत्व तत्व में विलीन हो गया, अब बचा नहीं शरीर, केवल बच गई एक आत्मा। सेकंड स्टेप, चलो ऊपर, आत्मा अब चले सूक्ष्म शरीर के साथ, सबसे पहले पहुंचेगी आकाश में, सूरज चांद सितारे, फिर उसके ऊपर अंतरिक्ष में, सौर मंडल निहारिका, ऊपर 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 जाएगी। आकाश गंगा, उसके ऊपर, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। ये तो नीचे का था, इसमें हम और बहुत सारी चीजें एडिशन, कहा ना इस चेकलिस्ट में और बहुत सारा एडिशन हो सकता है। वो जो आत्मिक स्वरूप है उसमें ही समान का अभ्यास किया जा सकता है, उठते ही समान का अभ्यास कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझे किसने उठाया, सामने कौन खड़ा है, इस तरह का अभ्यास। उसके बाद समान का अभ्यास, फिर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन की चेकलिस्ट, सामने बाप दादा, हम उनके सामने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो दृष्टि, आंखों से पवित्रता की किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है, नैनों से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है, या फिर ब्रुकुटी से शक्तियां निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। उसके बाद हाथ रख दिया बाप दादा ने, वरदानी हाथ रख दिया, क्या क्या दे दिया, जिसको जो लेना है लेना, ले लो, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान दे दिया। सोचो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, भगवान उसके हाथ सिर पे हाथ रख देता है, संपूर्ण, बस उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान, गुण और शक्तियां, ज्ञान ले लिया, गुण ले लिया, सारे 36 गुण कहां, रोज मारा मारी, एक गुण धारण किया दूसरा छूटता है, ये गुण लिया वो छूटता है, सारे गुण 36 के 36 गुण भगवान ने हाथ रख दिया और सारे प्रवेश, पूरा एकदम सारे गुण के गुण भर गए आत्मा में। तो ज्ञान भर गया, गुण भर गया, शक्तियां भर गई। फिर उसके बाद में तिलक, भगवान तिलक दे रहा है, विजयी भव, विकारों पर विजयी भव, इसका हम विस्तार भी कर सकते हैं वहां पर, सदा विजयी भव, निरंतर विजयी भव। तो विजयी भव, विकारों पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और बाकी सब, विजयी भव का वरदान लिया एक। दूसरा सफलता मूर्त भव, सफलता किसमें, सेवाओं में, जो भी सेवाएं सारे दिन भर में होगी उसमें सफलता। फिर उसके बाद में निर्विघ्न भव, सारी जो विघ्न आएंगे, निर्विघ्न भव, विघ्न मुक्त भव, विघ्न जीत भव, इस तरह से विघ्न विनाशक भव, तो निर्विघ्न भव। और एक वरदान, और तो बहुत सारे हैं वरदान, हजारों हैं, परंतु मुख्य ये तीन है, और एक एडिशन कर सकते, कर्मयोगी फरिश्ता भव, बाप समान, पूरा अगर ऐड कर दो तो कितना अच्छा वरदान बनता है ये, बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी फरिश्ता भव, इसमें सब कुछ आ गया, बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी, मतलब दिन भर में जो कर्म है उसमें योग रहेगा, और फरिश्ता भव, बाप समान संपूर्ण फरिश्ता कर्मयोगी फरिश्ता भव, ये चार वरदान, और एडिशन जितना लेने हैं वो लो, पर ये तो लेना है मस्ट में, ये चेकलिस्ट है, इतनी चार और फिर एडिशन जो करना है करो। तो वरदान, तो वरदान ले लिए, हाथ रख लिया, तिलक तो हो गया, तिलक में ही वरदान आ गया, दृष्टि ली और ब्रुकुटी से शक्तियां ली, हाँ वो भी अच्छी है। और एक चीज करनी है सूक्ष्म वतन में, सर्व संबंधों का अनुभव, संडे की मुरली पूर्ण अनुभव भी बने हो, एक संबंध निभाओ और सर्व प्राप्तियां, लेटेस्ट ऑफर जादूगरी, एक संबंध सर्व प्राप्तियां, तो सर्व संबंधों का अनुभव, माँ भी है तो बाप भी है, भाई भी है तो बहन भी है, तो साजन भी है, तो दोस्त भी है, तो शिक्षक भी है, आचार्य है वो हमारा, दिखाया ना चंद्रगुप्त, अशोका, जो भी समस्या आती है किसके पास जाते हैं? आचार्य के पास। मार्गदर्शक है, गाइड है। तो उसको पूछो कि जीवन में यह है, सब बताएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, बाबा ने कहा है। तो मार्गदर्शन, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वो मार्गदर्शक है, वो गाइड है। उसको गाइड के रूप में लो, भगवान हमारा गाइड है। ये जीवन में ये हो रहा है, क्या ये श्रीमत अनुसार है या इसको परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या करूं बोलो। तो बताएगा तुमको ये करो। तो मार्गदर्शक का रूप, गाइड का रूप, ये सबसे अच्छा रूप है उसका। एक बाकी तो है ही, बाप टीचर, उसके बाद में गुरु। कुछ भी समस्या आती तो राजा महाराजा किसके पास जाते थे? अपने गुरु के पास। क्या करूं बताओ, दशरथ जाता है ना, गुरु के पास जाता है, बताओ क्या करूं। ऐसा नहीं कि मुझे पुत्र चाहिए, परंतु वंश कैसे चलेगा, कुछ बताओ। जाई विधि हो ही नाथ हित मोरा, जिस रीति से मेरा हित हो जाए, हे गुरु मुझे बताओ क्या करूं। तो गुरु का रूप, केवल ये नहीं कहना आप बाप टीचर सदगुरु हो, चलो आगे बढ़ो। बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, ये हो, चलो आगे। वो बाप है, टीचर है, तो उसके टीचर रूप को और गुरु रूप, ये दो रूप का भी ज्यादा अनुभव करना है। हमारे पास में समस्या है, हमारे पास में कुछ प्रश्न है, उसको वहां पूछना, पूछना छोड़ देना, वो उत्तर मिलेगा कहीं ना कहीं, दिन भर में मिल जाएगा। तो सर्व संबंधों का अनुभव। तो ये सारा कार्य कहाँ हुआ? सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन को छोड़ो, शरीर छोड़ दो अभी सूक्ष्म वतन में, ये भी बंधन क्यों? सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म वतन में छोड़ दिया, और आत्मा अभी चलो नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट, अभी ऊपर परम धाम। परम धाम की स्थिति का लंबा समय अनुभव, फिर वहां क्या क्या करेंगे। सूक्ष्म वतन हो गया, साकारी दुनिया हो गई, अब दोनों दुनिया खत्म, अब हम पहुंच गए निराकारी दुनिया में, स्टार वर्ल्ड। तो हम स्टार का अनुभव करें, निराकारी दुनिया है तो निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। देख रहा हूं सब, और सब निराकारी आत्माएं हैं, मैं भी निराकारी हूं। निराकारी आत्मा आत्मा को देख रही है, तो मैं आत्मा कहां पहुंची? निराकारी दुनिया में, जहां सारी निराकारी आत्माएं हैं, तो मैं भी निराकारी हूं। संकल्प दूसरा, मैं निर्विकारी दुनिया में आ गई हूं, सारे तरफ देख रही हूं निर्विकारी आत्मा है, तो मैं भी निर्विकारी आत्मा हूं। कहां पहुंच गई हूं? ब्रह्मलोक में, चारों तरफ ब्रह्म है। जिस ब्रह्म के लिए भक्ति में सन्यासी क्या करते थे, कहते थे सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है वो वेद के चार महावाक्य है, वो चारों महावाक्यों का अनुभव। सर्व खलविदम ब्रह्म, चारों ओर जो कुछ है सब ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि वो कहते थे, यहां अहम ब्रह्मस्मि नहीं, मैं ब्रह्म हूं नहीं, मैं ब्रह्म में हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म में है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चेतन है, चेतन ब्रह्म नहीं है, मैं चेतन हूं, ब्रह्म जड़ है। वेदों के चार महावाक्य, उन चारों ही चीजों का यहां अनुभव। फिर इसी के संस्कार भक्ति में चालू होंगे, शायद हम कभी सन्यासी बने तो इस तरह की भी साधना उधर से चालू कर देंगे, क्योंकि ब्रह्म का अनुभव है ना थोड़ा बहुत, तो जिनको ज्यादा है वो ज्यादा करेंगे, जिनको कम है वो कम करेंगे। तो ब्रह्म लोक में हूं, निराकारी दुनिया, निर्विकारी दुनिया, ब्रह्मलोक, मैं निर्वाण धाम में हूं। आवाज नहीं है कोई, कोई संकल्प नहीं है, कोई बोल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई आवाज नहीं है, निस्तब्धता, निश्शब्दता, निरवता, खामोशी, बे आवाज, चुप्पी। ओम शांति। परम शांति। हमने बीच में एक जो चालू किया था ना इसी क्लास में, क्लास होने के बाद में बाबा की आवाज, वो हम बीच में चालू करेंगे, बिल्कुल एक मिनट का जो वीडियो है ना, तो अभी तुरंत एक मिनट में निराकारी स्टेज का अनुभव। उसके बाद परम धाम में ज्ञान सूर्य सामने, ज्ञान सूर्य की संपूर्ण ज्ञान की किरणें मुझ में आ रही है। शांति धाम में हूँ, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ आत्मा में समा रही है। शांति धाम, मुक्ति धाम, फिर उसकी सारी सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। इस तरह से इसका हम बहुत विस्तार कर सकते हैं। तो लंबा समय परम धाम में, बीज रूप स्टेज में, सीड स्टेज में, ज्वालामुखी योग, उसमें निरसंकल्प अवस्था में स्थित होने का अभ्यास, फिर परम धाम को छोड़ो और फिर आ जाओ नीचे स्वर्ग में। आत्मा के गुण, सात गुण जो है उनमें स्थित होना, बहुत सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं परम धाम में। फिर नीचे सतयुग में, सतयुग त्रेता, इसमें जितनी बातें हमको याद है सतयुग के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, या हमें जो बनना है, जैसे मैं संपूर्ण देही अभिमानी हूँ, पूरा ही सतयुग त्रेता, 8 जन्म 12 जन्म, इतने वर्ष, 1250 वर्ष उधर, फिर 1250 वर्ष, फिर 2500 वर्ष संपूर्ण आत्माभिमानी स्टेज, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, फिर इस तरह का संपूर्ण सतयुग का अनुभव। अगर समय है तो उसमें ज्यादा समय रमन करना, द्वापर में आ जाओ। द्वापर का हमने बहुत बार चर्चा की है, अपने ही अलग अलग भिन्न भिन्न विधि पूर्वक कैसे पूजा हो रही है। भक्त जिनकी पूजा कर रहे हैं वो हम हैं, देवियों का स्वरूप, एक एक देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, संतोषी, वैष्णवी देवी, उमा, ये जितने, शीतला देवी, सभी स्वरूप का अभ्यास, और दो हनुमान और गणेश, विष्णु, विष्णु का संगम पे करे तो अच्छा है, महावीर। तो इस तरह से भक्तों को वरदान देना, भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों को वरदान, आशीर्वाद, मनोकामनाएं पूर्ण करना, मन्नतें जो मांग रहे हो उनकी मन्नत को पूरा करना, सब कुछ द्वापर से। फिर आ जाओ संगम पर, ये चेकलिस्ट चालू है अभी भी, हाँ। फिर संगम पर प्राप्तियों का अनुभव, कौन मिला, कैसे मिला, किस लिए क्यों मिला अच्छा वो मिला है तो जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, पहले क्या थे अब क्या है। फिर संगम युग के गीत गाओ, मौज मनाओ, संगम युग का वर्षा, संगम को प्यार, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति, जब मिला वो घड़ी कौन सी थी, कौन सी तिथि, तारीख और नक्षत्र थे, उसके स्मरण करो, स्वयं के ही जीवन को देखो और वहां से चालू करो, वहां भगवान मिला और अब यहाँ है, कहाँ कहाँ उसने मदद की, प्राप्तियों की लिस्ट, वरदानों की लिस्ट, अधिकार की लिस्ट, बहुत कुछ उसने दिया है, वो सारी लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, वो सारा निकालो, हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला, और संगम योगी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण बनते ही पवित्रता का वरदान मिला है भगवान से, तो अब उससे सर्व संबंध जुटे हैं, उस संबंधों का फिर से अनुभव यहां करना। एक अनुभव किया था सूक्ष्म वतन में, यहां फिर से सारे संबंधों का अनुभव, कि तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम ये भी हो, तो उससे उसके प्यार में मगन होने की अवस्था है, ये अटूट प्यार यहां उत्पन्न करना है हृदय में। उपकारों को याद किया, कहां कहां उपकार किए, अगर तुम ना होते तो कहां होते, अगर तुम ना मिलते तो कहां होते, पता नहीं। तो ये सारा चीजों का संगम युग पर अनुभव, और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है वो है, इस तन को छोड़ो और बनो फरिश्ता, और फरिश्ता बनकर आकाश में। अभी हमको यहाँ बहुत सारे कार्य करने हैं, सबसे महत्वपूर्ण है फरिश्ता स्थिति में स्थित हो गए, अंतवाहक शरीर द्वारा घूमना है अभी विश्व भर में, बहुत सारे कार्य करना है, 50 कार्य करने हैं लगभग अंतवाहक शरीर द्वारा सबसे पहले प्रकृति को पावन करना है, तो सबसे पहले स्थित हो जाओ आकाश में, और क्या संकल्प करो मुझसे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। चलो सूक्ष्म वतन में भी स्थित हो सकते हो, जहां चाहिए वहां, हम चालू कर रहे हैं आकाश से, क्योंकि तत्वों को पहले सूक्ष्म वतन में स्थित हो जाओ फिर भले नीचे आओ, वैसे करो। या फिर ऐसे भी कर सकते, पहले सूक्ष्म वतन में चले जाओ, फिर बाबा से फिर से शक्ति लो, शरीर छोड़ो और आत्मा समझकर फिर से परम धाम में शिव बाबा को टच करो और फिर वापस सूक्ष्म वतन में, और फिर सूक्ष्म वतन से फिर धरती, फिर आकाश में। ये एक बार सेकेंड साइकिल ऊपर जाने का। फिर अभी सूक्ष्म वतन में है तो सूक्ष्म वतन से क्या क्या करना है। सूक्ष्म वतन से नीचे है, आकाश में है, आकाश को वहां से अभी पांच तत्वों को सकाश देना चालू करना है। सबसे पहले संपूर्ण आकाश को, सूरज चांद सितारों को, ग्रहों को, सारे जो ग्रह है उनको, नक्षत्र, ये सबको सकाश। या फिर स्थित हो रही है और किरणें बस निकल ही रही है, फिर नीचे उतरना। नीचे उतरते उतरते दूसरा तत्व जो है वायु, उतरते उतरते ही वायु को सकाश देते देते नीचे उतरना। नीचे उतरे कहां पर? धरती के ऊपर, पैर धरती पर है। अभी पैरों से ही सकाश निकलनी चालू हो रही है संपूर्ण ग्लोब को। एक तो संपूर्ण ग्लोब को एक साथ दे दी, अगर टाइम है तो फिर अब चलो एक एक महाद्वीप पर पहुंचो। सबसे पहले यूरोप, यूरोप की जमीन और वहां की सारी आत्माओं को सकाश। फिर चलो अमेरिका, अमेरिका में उत्तर और दक्षिण उसको सकाश। अफ्रीका, अफ्रीका को सकाश। एशिया खंड, ऑस्ट्रेलिया, नीचे एंटार्क्टिका, वहां तो लोग रहते नहीं, इसके लिए कोई सात महाद्वीप कहते हैं, कोई पांच ही कहते हैं। पांच इसलिए क्योंकि उत्तर और दक्षिण जो अमेरिका है उसको एक ही मानते हैं, या फिर ये जो है अंटार्क्टिका को हटा देते हैं। कोई नहीं है, बर्फ है, रिसर्च वाले लोग रहते हैं, 1,000-2,000 होंगे आज की तारीख में, हाँ सारे रिसर्च कर देखने जाते हैं क्या है। तो पांच तत्वों में ये हो गया धरती। फिर चलो पांच महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, नीचे दक्षिण महासागर, ऊपर आर्टिक महासागर। पांच महासागर में जाओ और वहां पे डालो जो डालना है, पवित्रता शक्ति थोड़ा बाढ़ कम आएगी। पांच तत्व और फिर अग्नि, पांच तत्वों को सकाश देके हो गया। उसके बाद में आ जाओ दुखी आत्माओं को इमर्ज करो सुख की किरणें, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें, अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की किरणें, तीन सेक्शंस। फिर उसके बाद में रोगी आत्माओं को पवित्रता की किरणें, फिर उसमें असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्टता की किरणें, ये हो गया। फिर भक्तों को इमर्ज करो, भक्त आत्माओं को मनोकामनाएं पूर्ण करो, जो अब तक ज्ञान में नहीं आए उनको इमर्ज करो। हे देवी देवता धर्म की आत्माओं आ जाओ, कहाँ हो? भगवान आ गए हैं और तुम अलबेले, आ जाओ। तो आत्माओं को इमर्ज करो कि आ जाओ, संकल्प करो कि जो आज यहाँ आएगा, टोल नाका पर एक लकीर खींचो, जो अंदर प्रवेश करेगा आज सारे दिन भर आबू में, बस तीर और घायल। या सेवा केंद्र पर है तो पूरा शहर जो है उसके उसको सकाश। तो ये हो गया। उसके बाद में चलो अभी संपूर्ण भारत को सकाश विशेष रूप से। फिर तीन सत्ताओं को सकाश, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और राज्य सत्ता। धर्म सत्ता में सारे जो उसमें जो भी जितने आ गए वो सारे साधु सन्यासी योगी तपस्वी महात्मा भक्त सब, धर्म सत्ता को सकाश। विज्ञान सत्ता में सारे वैज्ञानिक, और राज्य सत्ता में सारे राजनेता है, अभिनेताओं को भी डाल दो थोड़ा बीच में, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है, हॉलीवुड बॉलीवुड और जो भी हुड है। फिर उसके बाद में आओ सारे विश्व भर के अस्पताल, वहां के रोगी डॉक्टर्स और रोगियों के रिलेटिव्स परिजन, वो भी बहुत दुखी रहते हैं। तीन ट्रायंगल है हॉस्पिटल में, एक तो सबसे ज्यादा जो सकाश तो चिकित्सक को जरूरत है, उसकी बुद्धि ठीक रही तो वो दोनों ठीक रहेगा। चिकित्सक को सकाश, वो मरीजों को सकाश, और उसके जो परिजन है मरीजों के उनको सकाश। ये हो गया। अभी उसके बाद आ जाओ वेश्याओं को सकाश, उसके बाद में आ जाओ ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज में इसका बहुत विस्तार कर सकते हैं। एक तो सेवा केंद्र में अपने अनेक रूप प्रकट करो फरिश्ता के, और एक एक सेंटर पर जाओ, एक एक सेंटर की संदली पर बैठना, सामने बहने पीछे भाई बहने सबको सकाश, और संकल्प परम पवित्र आत्मा उस सेंटर का वातावरण यहाँ से बैठकर ही पावन बनाना है। दूसरा संकल्प में विघ्न विनाशक आत्मा हो, जो सेवा केंद्र में जो भी विघ्न होगा वो यहाँ से बैठकर ही समाप्त करना है। तो फरिश्ता रूप, जैसे एक ही फरिश्ता हमारे असंख्य रूप धारण करे, जैसे वो राम दिखाते ना अनेक रूप धारण करते, प्रभु धरि विविध शरीरा, एक ही राम अयोध्या वासियों को लगता है वनवास के बाद आता है तो सब मुझसे पहले मिले तो सबसे राम मिलते हैं, या गोपियों को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य करे, सारे गोपियों के साथ एक साथ कृष्ण नृत्य करता है। तो जैसे ही तो ब्राह्मण फिर उसके बाद में मधुवन को क्या करेंगे, सबसे पहले चले जाओ शांतिवन के ऊपर, शांतिवन के ऊपर, और शांतिवन में फरिश्ता रूप धारण करके वहां जो भी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, शिविर वाले आए हैं, या जो वहां के रहवासी है, निवासी है, सेवाधारी है, सबको पवित्रता की सकाश, ज्ञान सरोवर सबको पवित्रता की सकाश, पीस पार्क सबको पवित्रता की सकाश, म्यूजियम सबको पवित्रता की सकाश, संगम भवन सबको पवित्रता की सकाश, अस्पताल सबको पवित्रता की सकाश, पांडव भवन ऊपर, देखो नीचे कौन अमृत वेला कर रहा है और कौन कमरे में सो रहा है, जो सो रहा है उसको भी सकाश, जो कर रहा है उसको भी सकाश। ओम शांति भवन सब आ गया पांडव भवन में। ऊपर आबू के, आबू को संपूर्ण आबू को सकाश, जो अब तक यहाँ रहते हैं परंतु भगवान को नहीं जाना उनको सकाश, तो सारे ब्राह्मण परिवार को सकाश। और तीन ग्रुप इमर्ज करो, एक वो जिनको हमने जन्म जन्म दुख दिया है, क्षमा प्रार्थ, क्षमा प्रार्थना करो उनसे कि माफ कर दो, इस जन्म में जिनको दुख दिया है उनसे क्षमा मांगो, जिन्होंने हमको जन्म जन्म दुख दिया या इस जन्म में हमको बहुत दुख दिया उनसे उनको क्षमा कर दो, जन्म जन्म से जिनको हमने जिन्होंने हमें सहयोग दिया है पुरुषार्थ में या और किसी चीज में उनको धन्यवाद, उसमें माँ बाप, लौकिक परिवार अगर ज्ञान में नहीं है तो उसको सकाश। तो एक तो वो जिन्होंने दुख दिया है या हमने जिनको दुख दिया है और जिन्होंने सहयोग दिया है उनको धन्यवाद, ये तीन ग्रुप और इमर्ज करो उसमें। जो दुख देने वाले हैं उनको क्षमा, देने वाले हैं, अच्छा, जिन आत्माओं से हिसाब किताब, संभवित हिसाब किताब है उनको पहले से ही शुभ भावनाओं की सकाश। तो ये तीन ग्रुप अलग, वो तीन ग्रुप अलग, तो इस तरह से ये सारा अमृत वेले की है, ये है खाली सुबह का काम, एक घंटे के अंदर इसको बढ़ाओ फिर अगर का और अच्छा करना है तो और रोज चेकलिस्ट कि ये सारे कार्य हो जाने चाहिए। तो मंजू बहन बस इतना सा कार्य है, बहुत ही कम काम है ये लिस्ट अमृत वेला होने के बाद, ये क्लास से जाने के बाद चेक करो कि ये सारा हुआ है, इसमें से कोई छूटा तो नहीं, लिस्ट पूरी याद चाहिए सबसे पहले, तो लिस्ट में लिस्ट को सकाश। तो वो तो अभी आप देख लो कितने बजे किसको उठना है, ये काम करने हैं, डेढ़ बजे उठने से, हाँ तो उठाओ। अच्छा, तो ये सारे कार्य किसी भी हालत में पूरे होने चाहिए, इसे एक घंटे में करो, 15 मिनट में करो, और बहुत ज्यादा अगर अभ्यास हो गया तो 15 मिनट में ये सारे कार्य हो सकते हैं, 15 मिनट में भी, क्योंकि जितनी एक सेकंड का बाबा ने बात की है, एक सेकंड में ही, जब क्योंकि अव्यक्त और शक्तिशाली स्थिति होती तो ऐसे नजर घुमाओ और ये सारे कार्य हुए, पर केवल बुद्धि में चाहिए ये करना है तो होगा। अगर देखा जाए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा जैसे ही अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित है सारा अपने आप हो रहा है, संपूर्ण स्वतः ही सकाश निकलनी चालू हो जाती है। ये तो हमने क्योंकि रोज करना है ना, एक दिन होगा भले बहुत अच्छी स्थिति है तो स्वतः हो गया, दूसरे दिन इसके लिए चेकलिस्ट चाहिए, रटो फिर। ओम शांति। कल का एक होमवर्क, माताजी 6 दिन के 6 स्लोगन आपको रिपीट करना है, बहुत दिन से बच रहे हो, कल 6 दिन के